नमः समय साराय कौन भूषा चकाश चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतर।
तीसवीं गाथा पर चर्चा करनी है। आज रविवार का दिन है तो बहुत से नए लोग भी आए हैं, इसलिए 5 मिनट आज तक के विषय, 17 तारीख से आज तक जो शुरू हुआ है चला है, उसको अपन रिवीजन कर लें, फिर आगे अपन बढ़ेंगे, जिससे उन नए आने वालों की समझ में भी आए प्रसंग। और अपन भी इतने होशियार कहाँ हैं कि अपनी पुरानी बात अपन को याद रहती है, तो प्रसंग मिला लेने से सुविधा रहती है। प्रकरण ये चल रहा है कि आचार्य देव ने बहुत विस्तार से समझाया था कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। ये शरीर जुदा है और भगवान आत्मा जुदा है, इन दोनों को जो एक माने, आत्मा को शरीर का माने, शरीर को आत्मा का माने, इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध माने, वो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, शरीर और आत्मा को जो एक माने वो मूढ़ है, बहिरात्मा है, तत्व के बारे में कुछ समझता नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, यदि शरीर को ही आत्मा नहीं मानेंगे तो तीर्थंकर भगवानों की, आचार्य भगवंतों ने बहुत स्तुति की है, वो सब शरीर के आधार पर ही की है। भक्तांबर में तो यहाँ तक लिखा कि हे भगवान, तुम जिन शांत परमाणुओं से बने हो, वे परमाणु पृथ्वी में उतने ही थे, यदि और अधिक होते तो एक आध आदमी और बन जाता, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए मालूम पड़ता है वे परमाणु उतने ही थे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूता। यदि ये बात है तो क्या आप विचार करो, भगवान परमाणुओं से बने थे, पुद्गल के परमाणुओं से भगवान बनते हैं। ये मूर्ति तो जरूर भगवान पुद्गल के परमाणुओं से बनी है, लेकिन भगवान आदिनाथ भी पुद्गल के परमाणुओं से बने थे क्या? लेकिन भक्तांबर जैसे स्तोत्र में जो सर्वमान्य है और सारी दुनिया में रोजाना पढ़ा जाता है, उसमें भी भगवान को परमाणुओं से निर्मित बताया गया है। यदि तुम देह आत्मा नहीं है ऐसा कहोगे तो ये सारा स्तुति साहित्य झूठा हो जाएगा। आचार्य ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवहार में से देह और आत्मा को एक कहा जाता है और भक्ति स्तुति भी ये व्यवहार में से ही की गई है, इसलिए वो झूठी नहीं पड़ेगी। और निश्चय में से आत्मा और देह जुदी जुदी है, इसलिए निश्चय में से ये स्तुति भी ठीक नहीं है। तब प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि ये व्यवहार स्तुति है तो कोई निश्चय स्तुति भी होती होगी, तो उसके उत्तर में 31वीं गाथा में ये कहा कि हाँ निश्चय स्तुति होती है, और वो 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जितेंद्रिय जिन, दूसरा जित मोह जिन, और तीसरा क्षीण मोह जिन। जितेंद्रिय जिन का मतलब ये होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा श्रावक अथवा मुनि, उसका नाम है जितेंद्रिय जिन, क्योंकि ये 4थे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए मैंने श्रावक और मुनि दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ये जितेंद्रिय जिन। दूसरे होते हैं जित मोह जिन, जिन्होंने उपशम श्रेणी आरोहण करके जो 11वें गुणस्थान में पहुंचे हैं, उन्हें बोलते हैं जित मोह जिन, और वे दूसरे नंबर के भगवान के भगत हैं, वो दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति है। और तीसरे होते हैं क्षीण मोह जिन, 12वें गुणस्थान में, जिन्होंने सपक श्रेणी का आरोहण करके और 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, मोहिनी कर्म का भी नाश किया है, उन्हें बोलते क्षीण मोह जिन, वो तीसरे नंबर के भगत हुए। ये 3 प्रकार की निश्चय स्तुति होती है। तो शिष्य का प्रश्न है, ये बात पुरानी हो गई, अब नई शुरू होती है, मालिक जी इतने का सार जितने दिन अपन ने बताया ना, कितने व्याख्यान हो गए, 17 तारीख के शाम से लेकर अभी तक 20 के, हाँ 17 की दोपहर से, दो व्याख्यान 17 को भी हुए थे, 17, 18, 19, 20, 8 व्याख्यान हो गए, ये 9वां व्याख्यान है, ख्याल में है ना। तो इसका ये सार मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया। अब शिष्य का ये प्रश्न है कि आप क्या बात करते हो, ये छपक श्रेणी में 12वें गुणस्थान वाला भी भगत है, वो भी भगवान की स्तुति करता है, हमने तो सुना था कि वहाँ आत्मा का ध्यान होता है, वहाँ कोई आदमी अपने ज्ञान का गेय भी नहीं बनता है, जानने में भी नहीं आता है, क्यों, वो तो ध्यान की अवस्था है, और तुम उसे भक्ति कहते हो कि हाँ वास्तव में निश्चय स्तुति में बंद बंधक भाव नहीं होता। बंद बंधक भाव का मतलब ये होता है कि एक आदमी किसी की वंदना करे और दूसरा आदमी वंदना करवाए, ऐसा निश्चय में नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि निश्चय ऐसे तो सभी आत्मा समान है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। जब कोई भेद ही नहीं है, अंतर में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सब बराबरी है के हैं, तो कौन किसको नमस्कार करे, नाइयों की बारात में पलीता कौन ले, हमारी तुम्हारी बारात में तो नाई पलीता ले लेगा, जब सब समान है तो कोई किसी को नमस्कार क्यों करे। तो फिर ये स्थिति कैसी होती है कि भगवान की ये आज्ञा है कि तुम स्वयं भगवान बन जाओ और बन सकते हो, हम भी एक दिन तुम जैसे ही थे और हमने अपनी आराधना की तो भगवान बन गए, तुम भी भगवान बन सकते हो। महावीर पूजन में एक दोहा आता है ना, भूतकाल प्रभु आपका यह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। एक दिन जैसे आप थे वैसे आज हम हैं, और जैसे आज आप हैं एक दिन हम वैसे ही बनने वाले हैं। तो इसलिए भगवान की ये आज्ञा है कि तुम भी भगवान बन जाओ अपनी आत्मा की आराधना करके। तो हम अपनी आत्मा की आराधना करें, अपने आत्मा का ध्यान करें, तो ये भगवान की आज्ञा का पालना हुआ ना, इसलिए उनकी ये सच्ची निश्चय स्तुति है। देखो अब एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कि आप एक कैसी बात करते हो कि ये निश्चय स्थिति है। आपने ये कहा था कि देह के आश्रय से भगवान का वर्णन करना वो व्यवहार स्थिति है, और आत्मा के आश्रय से भगवान का वर्णन करना वो निश्चय स्थिति है। इसलिए दो गोरे, दो सांवले, दो हरियले, दो लाल, ये तो हो गई व्यवहार स्थिति, और आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये हो गई निश्चय स्थिति। सतीश भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कहते हो, कबरा जी समझ में आया ना प्रश्न, तो आचार्य उत्तर देते कि नहीं ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक नए होता है व्यवहार असद्भूत व्यवहार नए, और एक नए होता है सद्भूत व्यवहार नए। व्यवहार नए के दो भेद हैं, तो असद्भूत व्यवहार नए तो देह और आत्मा को एक कहता है, और सद्भूत व्यवहार नए आत्मा में गुण भेद करके समझाता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र। तो देह के आधार पर जो स्तुति की जाती वो तो होती असद्भूत व्यवहार नए की, और आत्मा के गुणों के आधार पर जो प्रशंसा की जाती वो होती सद्भूत व्यवहार नए की स्तुति। निश्चय नए कहाँ आया, काली साहब ख्याल नहीं बात है आपकी वजह से समझ में, मुझे ख्याल नहीं, माफ करो। वो निश्चय नए की स्तुति कैसे होती, वो तो सद्भूत व्यवहार नए ना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आत्मा केवल ज्ञानी है, ये सद्भूत व्यवहार नए से है ना सुशील जी। तो यदि हम गाथा में यद्यपि ऐसा लिखा है केवली गुणों का स्तवन केवली निश्चय स्तुति है लिखा गया नहीं, लेकिन ये व्यवहार नहीं होता, निश्चय नहीं होता, उन्हें व्यवहार के विरुद्ध निश्चय नए खड़ा करना था, और निश्चय नए तो चुप्पा है, बोलता ही नहीं है, वो किसी दूसरे की बात ही नहीं करता है। भगवान भी तो अपने से पराए हैं ना, दूसरे हैं ना, अपने आत्मा से जुड़े हैं ना, तो वो उनकी बात करे तो वो निश्चय नय ही नहीं है। इसलिए निश्चय नय की स्तुति भगवान के गुणों के वर्णन के आधार पर नहीं होगी, तो काय के आधार पर होगी कि तुम अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, ये ही निश्चय स्तुति है। ये बात जची नहीं, भगवान की तो बात ही नहीं आई, और तुम कहते हैं भगवान की स्तुति हो गई, तो ये कैसे हो गई? तो मैं आपसे बोलता हूँ, देखो भगवान बाहुबली, बाहुबली का वर्ष चल रहा है ना, इसलिए मुझे बाहुबली के उदाहरण याद आ रहे हैं ज्यादा। मुनिराजों का ये नियम है, छह आवश्यक होते हैं मुनिराज के, कैलाश जी जानते हो कौन कौन है? समता धर बंधन करे नाना थुति बनाए, तो उसमें नाना थुति बनाए माने नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करना, ये छह आवश्यकों में एक है कि नहीं है? और बंधन करे ऐसा नमस्कार करना, समता धर बंधन करे और नाना थुति बनाए, तो मुनिराज के छह आवश्यक कामों में रोजाना भगवान को नमस्कार करना और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करना, ये मुनिराज के छह आवश्यक गुणों में है, आवश्यक कर्मों में है। तो हर मुनिराज को ये आवश्यक कर्म तो करना ही चाहिए ना, क्यों क्रांति कुमार जी? और बाहुबली ने नहीं किए तो समझ में आए ना, क्योंकि वे आत्मा के ध्यान में खड़े हो गए ना, तो एक बरस तक खड़े ही रहे, तो उन्होंने किसी को वंदना की, किसी की स्तुति की, भक्तांबर जी का पाठ किया नहीं किया? तो वे दो कम हो गए ना उनके आवश्यक, एक उन्होंने किसी की वंदना नहीं की और एक किसी की स्तुति नहीं की। और 28 मूल गुणों में दो मूल गुण ऐसे हैं, एक बार दिन में ले आहार खड़े अल्प निज पान में कच लोच करत न। तो आप देखिए, दिन में एक बार आहार लेना अल्प और खड़े खड़े आहार लेना, ये दो मूल गुण है 28 में के नहीं? और कच लोच केस लुंच करना, 12 महीने तक खड़े ही रहे तो उनने आहार ही नहीं लिया, तो अल्प क्या लेंगे और खड़े खड़े क्या लेंगे? क्यों? तो दो मूल गुण का है क्या? अरे चार हाथ जमीन देख के चलना, ये ईरिया समिति है, है कि नहीं? और हितमित प्रिय बोलना, ये भाषा समिति है, जानते ना। 32 अंतराय और 40 दोष टालकर आहार लेना, ये ऐसा समिति है। और पिछी कमंडल देख कर रखना और देख कर उठाना, कोई जीव जंतु ना मर जाए, ये आदान निक्षेपण समिति है। और मलमूत्र का क्षेपण करें तो भी जमीन को देख कर निर्जंतु थान विलोक तन मलमूत्र क्षेपण करें। तो उन्होंने तो नाचा रहा, जमीन देख के चले, क्योंकि चले ही नहीं, क्यों वे बोले ही नहीं तो हितमित प्रिय वचन क्या बोलेंगे? आहार किया ही नहीं तो 32 संतरा टाल कर क्या करेंगे? 40 दोष टाल कर। और किसी कमंडल उठाए रखे नहीं, जहां पड़े सो पड़े, और मलमूत्र का क्षेपण भी नहीं किया, बोलो। तो 5 समिति गायब हो गई, तो इनके तो बहुत कमी थी, क्यों नहीं? उनके एक व्यवहार 5 समिति नहीं थी। निश्चय से समिति तो आत्मा का ध्यान ही है, नियम सार पढ़ के देखो तो उसमें आएगा, समिति भी आत्मा का ध्यान, गुप्ति भी आत्मा का ध्यान, प्रत्याख्यान भी आत्मा का ध्यान, प्रतिक्रमण भी आत्मा का ध्यान, आलेखना भी आत्मा का ध्यान, और एक दफे दिन में आहार लेना भी आत्मा का ध्यान। हाथी के पैर में सब समाते हैं, एक होता है परमावश्यक कार्य और एक होता है आवश्यक कार्य। जब कोई आदमी परमावश्यक कार्य करता होता है तो उसे सब आवश्यक कार्यों से छुट्टी मिल जाती है। जैसे सुबह आप रोजाना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर दुकान पर जाते हैं, फिर धंधे पानी में जाते हैं, ऐसा सब होता क्या? नहीं होता। हमारी दिनचर्या बनी हुई है सुबह से लेकर शाम तक, वो सब आवश्यक काम है क्या? नहीं। लेकिन जब एकदम इमरजेंसी आ जाए और कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया हो तो हम दौड़ के उसे उठा के अस्पताल भागते हैं क्या? नहीं। और दिन के सारे आवश्यक कामों से हमें छुट्टी मिल जाती क्या? नहीं। अब कोई हम पे आरोप लगाता है, आज तुमने पूजा नहीं की, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया, आज तुमने दुकान पे क्यों नहीं आए, जब परमावश्यक काम आ जाता है तो सारे आवश्यक काम से छूट मिल जाती है, तो आज मुनियों के सब आवश्यकों से उन्हें छूट मिल गई।
क्या नाम धर्म सिंह जी?
तो इसलिए निश्चय स्तुति उनके है कि नहीं बाहुबली के? यदि आत्मा के अनुभव को निश्चय स्तुति नहीं मानते तो हम कहते कि उनके निश्चय स्तुति नहीं रही। इसलिए उन्होंने समताधर बंधन करे और नाना थुति बनाए वाला एक अंग भंग कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि निश्चय स्तुति विकल्पात्मक नहीं होती, आत्मा के अनुभव रूप ही होती। ठीक है, अब देखिए कि ये पहले नंबर की जो निश्चय स्थिति है वो जितेंद्रिय जिन है। तो जितेंद्रिय जिन माने क्या? इंद्रियों को जीतना। तो इंद्रियों के जीतने का क्या अर्थ है? यहाँ कान को तोड़ना बोड़ना इंद्रियों के जीतने का अर्थ नहीं है। इनसे काम नहीं लेना वास्तव में इनका जीतना है। आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपके पास इतना सामान है कि आप अपने हाथ से उठा करके और गाड़ी में नहीं रख सकते हैं, तो कुली आ जाएंगे और एक कुली हाथ लगा देगा, दूसरा कुली फिर आएगा नहीं। 5 रुपए का काम है वो 50 रुपए मांगेगा, क्या करेंगे आप? कि 5 रुपए के 50 रुपए मांगता है, लेकिन वो जानता है कि आप उठा के ले नहीं जा सकते हैं, और दूसरा कुली हाथ लगाएगा नहीं, आप झकमार के 50 रुपए देने वाले हैं अंत में।
ठीक है भाई साहब, आप ले पता हाथ जोड़ के कहे
क्यों? अब देखिए, इतने में अपना एक साथी आ गया, कपूर सिंह जी आ गए। कहाँ आना है पंडित जी? कोई गाड़ी में जाना है, कुली 50 रुपए मांगता है। अरे चलो, दो तुम उठाओ दो मैं उठाता हूँ। तो एकदम कुली दौड़ के आता है, बाबू जी 6 रुपया दे देना। 40 से एकदम 6 पे आ जाता कि नहीं आ जाता है? और यदि अपने अपने बस की नहीं है ले जाना तो 39 रुपए लेने को तैयार नहीं होता है। अभी आप कल्पना कीजिए, आप भी समझ गए कि गाड़ी चूक जाएगी, 50 रुपए देने पड़ेंगे, पर ज्यादा चिक चिक की तो बेइज्जती भी होगी और गाड़ी चूक जाएगी। सदर उठा, समझता कुछ है नहीं, फिरूंगा। समझे ना, अंदर से तो आप ऐसा समझते हो कि मैं चक्रवर्ती का राज्य हार गया हूँ, मेरी भरत जैसी दुर्दशा हुई है। लेकिन बाहर से आकर के कहते हैं ना, चतर उठा तुम भी क्या कहेगा, किसी रहीस से पाला पड़ा। और जब वो वजन लेके चलता है तो वो समझता है कि मैं जीत गया हूँ, यद्यपि आपका वजन उसने उठाया है, पर वो जीत महसूस करता है और आप हार महसूस करते हैं। क्यों? और यदि आप अपना वजन उठा के चल दे तो वो हार महसूस करता है और आप जीत महसूस करते हैं। क्यों? उसे तो उससे काम तो तुमने करा नहीं पाया और खुद ले जाना पड़ा, तो तुम हारे। ये तो हारना चाहिए ना, लेकिन अंदर में हार नहीं, तो समझता क्या है मैं अपना काम नहीं कर सकता क्या? तो जीतने का उपाय क्या है? जिसे जीतना हो उससे काम लेना बंद कर दो, ये उसे जीतने का उपाय है। हाथ पैर जोड़ के उससे काम करवा लेना, चाहे जो कीमत देकर काम करवा लेना, ये तो हार का प्रतीक है, ये जीत का प्रतीक नहीं है। क्यों प्रभु जी? तो अब अपन को इंद्रियों को जीतना है, तो इंद्रियों को कैसे जीते? कि डंडा मार मार के इनसे काम ले लेना, अथवा इनको माल मसाला खिला के, हलवा पूरी खिलाकर, विटामिन बी कम्प्लेक्स की गोलियां खिला खिला के इस शरीर से काम ले लेना, ये इसको जीतना है कि इनसे काम ही नहीं लेना, ये इनको जीतना है, आप नक्की करो। तो ये इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम करना ये इंद्रियों की जीत है और आत्मा की हार है। और आत्मा इनके माध्यम से जानने देखने का काम बंद करके सीधा अपने आत्मा के माध्यम से जानने देखने का काम करे तो उसका नाम हो गया आत्मा की जीत। ठीक है, कैसा? सामने वाला जो रूप रस गंध स्पर्श है ना, वो तो आंख कान नाक के बिना समझ में नहीं आएगा। ये हलवा रखा ना थाली में, इसका मजा तो जबान के बिना नहीं आएगा। आत्मा सीधा जान तो सकता है उसे कैसा मीठा है, लेकिन मजा नहीं ले सकता। सच्ची बात है ना? क्यों सुशील जी? हलवा हलवा को है ना, बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया है, बादाम का बना है, अब मुंह बंद रखो। ज्ञान तो हो सकता है लेकिन आनंद नहीं आएगा। तो कहते पांच इंद्रियों के माध्यम से हम जो पुद्गल को जानते हैं वो जानना होगा ही नहीं फिर। तो कहते क्या जरूरत है, आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने में है, अच्छी बात है। यदि पांच इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थ जानने में नहीं आएंगे तो आत्मा को जानने की पूरी फुर्सत मिल जाएगी। क्या सोचने का तरीका तो सोचो आदमी आचार्य का। क्या कहते हैं मनोहर लाल जी, ये आंखें चली गई तो क्या होगा, तो होगा क्या, 24 घंटा अपने आत्मा को देखूंगा। क्यों कि आंखों से दुनिया दिखाई देती है तो यही उलझा रहता हूँ। क्यों, दुकान से छुट्टी मिल जाएगी, मकान से छुट्टी मिल जाएगी, रोटी बनाने से छुट्टी मिल जाएगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, और आराम से अपने भगवान आत्मा को अंदर में बैठ के देखा करूंगा, क्या नुकसान होगा। क्योंकि तो कान चले गए तो तुम्हारा प्रवचन सुनने से छुट्टी मिल जाएगी। क्यों, अपने आराम से अंदर में अपने भगवान आत्मा को देखूंगा। अरे इंद्रियां चली जाएंगी तो हमारा क्या कर, हमारा आत्मा को थोड़ी लेके जाएंगी। ज्ञान तो आत्मा में है ना, और इनसे तो पर पदार्थ दिखाई देते हैं, आत्मा तो दिखाई देता नहीं है। इसीलिए तो सामायिक में और ध्यान की मुद्रा में हमें आंखें बंद करना पड़ती है ना। इसलिए आंखें आत्मा को जानने के काम की होती, तो जब आत्मा का ध्यान और ध्यान करते हैं तो इन्हें बंद क्यों करते हैं। चलो बंद करने की झंझट और मिटी, अपने आप खत्म हो गई, अंधे हो गए, तो एक काम तो कम हो गया ना। आपको सामायिक करनी पड़ेगी तो आंख बंद करनी पड़ेगी, और हमें करनी पड़ेगी तो आंख भी बंद नहीं करनी है, बंद ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इंद्रियों से काम लेना, बंद करना, ये इंद्रियों को जीतना है। तो कहते काम लेना बंद करेंगे तो ज्ञान का काम ही बंद हो जाएगा, तो तुम्हारी हार हो जाएगी। ज्ञान का काम चालू रहे और इंद्रियों से काम लेना बंद हो जाए, कुली से काम नहीं ले और सामान अपना रेल के डिब्बे में पहुंच जाए तो तुम्हारी जीत होगी। यदि वो प्लेटफार्म पे ही पड़ा रहा तो महाहार होगी। समझ में आया कि नहीं, इंद्रियों के बिना आत्मा को जान ले तो जितेंद्री बना होगा, ठीक है कि नहीं। तो इंद्रियों के जीतने का उपाय क्या बताया, इंद्रियों से काम नहीं लेकर अपने आत्मा को अपनी ज्ञान पर्याय से सीधा जानना। और इंद्रियां तो शरीर हैं, शरीर परिणाम को प्राप्त हैं, इसलिए वे तो मेरे से जुदी हैं, ऐसा जानना ये द्रव्य इंद्रियों को जीतना है। ये क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो खंड खंड है, और मैं तो अखंड ज्ञान वाला हूँ, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान रूप भाव इंद्रियों से अपने आत्मा को जुदा जानना और उसे ही जानते रहना, ये भाव इंद्रियों को जीतना हुआ। और ये सारे पदार्थ जो मेरे ज्ञान के गेय बनते हैं, भले ही मेरे ज्ञान के गेय बनते हो लेकिन इनका मेरा कोई संग साथ नहीं, ये जुदे हैं और मैं जुदा हूँ, ऐसा उनके असंगपना जानकर अपने आत्मा को जानते रहना, इसका नाम इंद्रियों के विषयों को जीतना हुआ। ऐसा जो जितेंद्रिय जिन है वो पहले नंबर का भगत है, और वो पहले नंबर की निश्चय स्तुति है। और जो गेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। अब थोड़ी कठिन बात चलेगी, ये गेय ज्ञायक संकर दोष क्या है भैया, उसका परिहार क्या। गेय माने जानने वाली दुनिया, जानने में आने वाले पदार्थ, दुनिया सारी दुनिया माने गेय, और ज्ञायक माने अपना भगवान आत्मा, और संकर माने इनकी मिलावट, इन दोनों को एक जान लेना, उसका नाम गेय ज्ञायक संकर, ये है दोष। और इसका परिहार माने क्या कि दुनिया को अलग जानना और अपने आत्मा को अलग जानना, और दुनिया को भी जानकर छोड़ देना और आत्मा को जानकर जानते रहना, इसका नाम है गेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार। क्या बात है, एक तरफ राम और एक तरफ गांव, गांव पे से दृष्टि हटाकर, गांव को छोड़कर राम को पसंद कर लेना, राम में ही रम जाना, ये जगत को जीतने का सबसे बढ़िया उपाय है। एक तरफ है आत्मा राम और एक तरफ है सारी दुनिया, ख्याल में आए ना। तो सारी दुनिया से दृष्टि हटाकर आत्मा राम पर दृष्टि लगाना, इसका नाम इंद्रियों को जीतना है, ख्याल में आए ना। और जीतने के लिए इंद्रियों में कुछ नहीं करना है। तुलसीदास जी की एक बहुत मार्मिक पंक्ति है, जाको प्रिय न राम बैदेही सो तजिए करोर बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऊपर से देखो तो लगता कितनी सांप्रदायिक भावना भरी हुई है। क्या लिखा, जाको प्रिय न राम बैदेही, राम और सीता जिसको प्यारे नहीं है, ताको तजिए करोर बैरी सम, वो एक बैरी नहीं करोर बैरी के समान है, भले ही वो हमसे कितना ही प्रेम क्यों नहीं करता। यद्यपि परम स्नेही, क्या गप्पे मारते हो, कोई ने ऐसा किया भी है, कोई ऐसा कर भी सकता है कैलाशन जी, कि किया है ना, तो किसने किया, कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखो प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया राम का विरोधी होने से, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया राम का विरोधी होने से, भरत ने माँ को छोड़ दिया राम की विरोधी होने से, समझ में तो आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं ना। प्रहलाद ने हरण कश्यप को छोड़ दिया था ना, राम का विरोधी था, और विभीषण ने रावण को छोड़ दिया राम का विरोधी होने से, और भरत ने कैकेयी अपनी माता को छोड़ दिया राम का विरोधी होने से, छोड़ दिया, छोड़ दो। पहले मुझे लगता था कि बड़ी सांप्रदायिक बात है, जो राम को नहीं चाहे उसे छोड़ दो, शत्रु मान लो, ये तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है। इतना संशोधन कर दो कि डाको प्रिय न आत्म रामा, बस बस सो तजिए करोर बैरी सम, ख्याल में है ना। वो कितना ही अपना हो, इतनी बात लगा दो तो अपनी बात पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो भाई, पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, तो कैसे जीता, वो 18 दिन का जो युद्ध हुआ था वो तो बाद में हुआ था, लेकिन हार जीत का फैसला तो उसी दिन हो गया था कि जिस दिन दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए थे सहायता के लिए, और उन्होंने कहा था एक तरफ मैं अकेला निहत था और एक तरफ सारी सेना हथियारों सहित, बोलो सुन लो, और अर्जुन ने अकेले निहत्ते कृष्ण को पसंद किया था और दुर्योधन ने सारी सेना को हथियारों सहित, हार जीत का असली फैसला तो उसी दिन हो गया था, बाकी तो क्रियान्वय की देर थी, हुआ था ना। जो कोर्ट में वकील लोग जाते हैं ना, तो चार लेन का दावा करते हैं और चार लेन का जवाब दावा होता है, फिर भले ही हजार हजार पेज की फाइलें बन जाए, लेकिन फर्स्ट डे जो चार चार लेन के दावा और जवाब दावा होता है ना, असली हार जीत का फैसला उसी में नक्की हो जाता है। यदि सही भाषा में सही पॉइंट के आधार पर दावा हो गया अथवा सही पॉइंट पर जवाब दावा हो गया, क्योंकि सारी लड़ाई तो उसी को आधार मान के चलने वाली है, क्यों, और जाकर के उसमें उनने हत्या का आरोप लगाया, इसने हत्या की है, और तुमने जवाब दवा में लिख दिया कि हाँ मैंने हत्या। ऐसे ही मुक्ति का मार्ग तो पूरा जब होगा तब होगा 12वें गुणस्थान तक का, लेकिन सारे जगत को दो भागों में बांटा, एक तरफ आत्मा ज्ञायक और दूसरी तरफ गे, और तू कौन, कि एक तरफ तू अकेला ज्ञायक और दूसरी तरफ मालूम गे माने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और ये पुद्गल में मकान जायदाद वगैरह सब आ गए, बढ़िया बढ़िया रंग महल सब आ गए थे, आ गए कि नहीं आ गए, और फिर और बाकी के द्रव्य स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब में पर में आ गए कि नहीं, और देव सास गुरु ये भी पर में आ गए, ये अतीतम चैत्यालय ये भी पर में आ गए, बोलो, और तुम्हारा अकेला आत्मा एक तरफ, बोलो दो में से क्या चाहिए, इतना माल थोड़ा सा इधर खिसका दो ना, अगर आप पंच परमेश्वरी हमारी तरफ धर लो, फिर हम आत्मा और पंच परमेश्वरी को मान लेंगे, बाकी नहीं नहीं पंच परमेश्वरी भी उसी तरफ रहेंगे, तो पर हम वही दुनिया ही लिए लेते हैं, तुम्हारा आत्मा तुम ले जाओ, करो बेटा दुनिया में अब आराम से रख लो, समझ में आने के नहीं है? सारा जगत एक तरफ और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक तरफ, और जिसने अपनी श्रद्धा में उस त्रिकाली ध्रुव को चुन लिया वो जीत हार का निर्णय वही नक्की हो गया कि अब इसका मोक्ष नक्की है। देर लगेगी, अब वो महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती जाए तो 18 वर्ष में चाहे 18 लाख वर्ष में, लेकिन अब जीती जाएगी क्योंकि बीज सही पड़ गया है और जगत को चुन लिया तो जगत ही हाथ रहने वाला है। ठीक है ना? तो क्या हुआ, उसी दिन फैसला हो गया था कि नहीं हो गया था? श्री कृष्ण को निहत्थे को चुना, तो महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण का क्या योगदान था साहब? उनकी हैसियत ही क्या थी? सारथी किसे कहते हैं आप जानते तो होंगे ना, आज की भाषा में ड्राइवर, ऑर्डिनरी ड्राइवर, मैंने सारथी क्यों, आज की भाषा में उसका क्या नाम है? ड्राइवर। वो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बात करते हो, अर्जुन का सारथी। अरे अर्जुन के बाप का सारथी हो, सारथी तो सारथी रहेगा, ड्राइवर तो ड्राइवर रहेगा, तब वो किसी का ही हो। तो महाभारत में एक साधारण ड्राइवर होकर के भी घबराना नहीं, मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन्हें बहुत महान मानता हूं। ड्राइवर कह के सारथी का ऐसे ही ड्राइवर होता है, मैं करूं क्या? लेकिन भाई साहब, युद्ध के जीतने में उनका सबसे बड़ा श्रेय क्या था? एक ही काम उनने किया पूरे युद्ध में, कि अर्जुन के पक्ष के लोगों को, पांडवों के पक्ष के लोगों का चित्त विभक्त नहीं होने दिया और कौरवों के तरफ के लोगों का चित्त विभक्त किया। जिनका ध्यान बच गया वे मारे गए, और जिनका ध्यान नहीं बचा अपने आत्मा में लगा रहा वो जीत गए। मैं आपसे पूछता हूं, कोई तपस्वी तपश्चर्या करता है मणिचंदी साहब, ऊपर से देवांगनाएं आती है उसे डिगाने के लिए, तो वे क्या डिगाती है? क्यों वो आते हैं सांप बिच्छू उपसर्ग करते हैं भयंकर, तो वे क्या डिगाते हैं? डिगाने का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। डिगा दिया माने क्या? बस उनके ध्यान को आत्मा से हटाकर अपनी तरफ ले आना, इसके अलावा कुछ डिगाना है? और डिग गए माने उनकी तरफ ध्यान चला गया तो डिग गए, और उनकी तरफ ध्यान नहीं गया तो उसका नाम नहीं डिगे। ध्यान गया माने वे ज्ञान के गे बन गए तो हम डिग गए, और वे हमारे ज्ञान के गे नहीं बने, हमारा आत्मा ज्ञान का गे बना रहा तो हम जीत गए। किनको? उन्हें नहीं, कर्म रूपी शत्रुओं को, मोह रूपी शत्रु को यहां नाश कर देते हैं, सिर्फ उनकी तरफ ध्यान नहीं जाए तो। बस अपना ध्यान नहीं बचे तो हमारी जीत नक्की है, और ध्यान बच गया तो हमारी हार भी नक्की है। तो क्या किया श्री कृष्ण ने? सामने वाले हर सेनापति को एक गोली खिलाई। सात सात सेनापति हो गए ना, सबसे पहले कौन थे? भीष्म पितामह। कि पितामह जी, आप तो कहा करते थे कि मेरे तो जैसे पोते कौरव जैसे ही पांडव, आज कौरवों की तरफ से लड़ने पर चले गए, वो पांडव तो तुमको बहुत अच्छे लगते थे, अरे तुम इनके भी दादाजी हो, उनके भी दादाजी हो, थोड़ा सोचो तो। ऐसा कह कह के उनके दिमाग में पांडवों के प्रति करुणा पैदा की। अब जो शत्रु के प्रति जिसके हृदय में करुणा पैदा हो गई, भगवान जाने उसकी क्या दशा होगी। क्यों वे गए तो द्रोणाचार्य आए, गुरु जी आप तो कहा करते थे कि अर्जुन मेरा सबसे प्यारा शिष्य है, दुनिया में मेरा नाम करेगा तो अर्जुन करेगा, लेकिन आज दुर्योधन के पक्ष में चले गए, उस धन तनखा मिल गई होगी। देवी का सूट केस का कमाल है। क्या हुआ गुरु जी? और उनके हृदय में अर्जुन के प्रति कोमल परिणाम पैदा किया, यहाँ के सेनापति के प्रति। अब वहाँ के सेनापति का यहाँ के सेनापति से प्रेम करने लग जाएगा तो फिर क्या होगा? वही हुआ। अब कर्ण अपकर्ण बने साहब। तो यहाँ बहुत खतरनाक बात है, कर्ण को भी पता नहीं था कि अर्जुन मेरा भाई है, और अर्जुन को भी पता नहीं था कि कर्ण मेरा भाई है, जम के आमने सामने खड़े थे। तो श्री कृष्ण बोले कुंती से कि अब बुआ जी अब जाओ आप और कर्ण को बोलो कि वो तेरा बेटा है। ये क्या बात करते हो, आज जाऊंगी तो वो बोले मैं तेरा बेटा कैसे, तो बताऊंगी कि पैदा होते ही मैंने तेरे को पानी में बहा दिया था, क्या होगा कच्चा खा जाएगा मुझे, घबराओ मत जाओ, गुस्सा तो होगा ये तो मैं जानता हूँ, बहुत खरी खोटी सुनाएगा, लेकिन सुन लेना यदि पांडवों की रक्षा करनी है तो एक ही उपाय है कि उसके दिल में पांडवों के प्रति ये मेरे छोटे भाई हैं ऐसा भाव आना ही चाहिए, नहीं तो उसे जीतना सरल नहीं। क्या जब वो जाने लगी तो क्या एक बात ध्यान रखना, यदि माँ के प्रति शायद प्रेम उसके हृदय में उमड़े भी नहीं तो भी ये घमंडी बहुत है, और उसको इस बात का घमंड है कि मेरे जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं है, मेरे दरवाजे से कोई आज तक वापस लेके नहीं गया, तो फिर नहीं माने तो उससे तू भीख मांग लेना, और क्या मांगना कि बस मेरे पांच बेटों की सुरक्षा मांग लेना। अब पांच बेटे यही तो राजा है, इनकी सुरक्षा मांग ले फिर क्या, अब वो दानी मैं दान भी कर जो मांगेगा उसे अवश्य दूंगा। क्यों गई कुंती, खूब सुनाया उसने, अब तू आ गई, अब मेरी अम्मा बन गई, जब तूने पानी में फेंक दिया था, जब मेरा अपमान हुआ, जब उसने कह दिया सूत्र से नहीं लड़ूंगा, अर्जुन ने कह दिया तब भी तुझे पता था कि मैं तेरा बेटा हूँ, तब तूने नहीं बताई ये बात, आखिर दुर्योधन ने कहा कि मैं इसे राजा बनाता हूँ, और आज तेरे को याद आ गई, कुछ निकल जाए यहाँ से, मैं कोई मामा कुछ नहीं मानता। हमने सुना कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, मैं भीख मांगती हूँ, पानी पानी भीख मांगती है, क्या मांगती है? बोल के बोल क्या मांगती है? मेरे दरवाजे से आज तक कोई वापस लौट के नहीं है, आ गए बेटे घोड़े के नीचे, कोई दानवीरता में नहीं आए मानवीरता में आए, क्या मैं पांचों पांडवों की सुरक्षा मांगता हूँ मांगती हूँ, आ गई ना अपनी औकात पर, जब मैं तेरा बेटा था तो तूने छह पांडवों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं की, समझ में आया कि नहीं आया, तूने मेरी सुरक्षा की मांग क्यों नहीं की, मैं तेरा बेटा हूं ना सबसे बड़ा, तो पांचों बेटों की भीख क्यों मांगती है, तेरे पांच बेटे ही है ना अभी भी तेरे मन में, तू उसकी सिखाई हुई आई है जो सारथी बन के बैठा है तुम्हारे यहां, यदि मैं तेरा बेटा हूं और तेरा प्रेम उमड़ा है तो तू को छह बेटों की सुरक्षा की भीख मांगती मेरे से, मैं तुझे देता, किसी को मैंने आज तक वापस नहीं किया है, लेकिन तू इतनी बुद्धिमान कहां है, मैं बच गया, यदि छह की मांग ली होती तो मेरा लड़ना ही मुश्किल हो जाता, लेकिन तूने पांच की मांगी, अब मेरी समझ में आ गया तेरे पांच बेटे सुरक्षित रहेंगे, यदि अर्जुन मर जाएगा युद्ध में तो मैं तेरा पांचवा बेटा हूं ना, और मैं मर जाऊंगा तो तेरे पांच बेटे ही रहेंगे, इसलिए मैं चार को नहीं मारूंगा लेकिन अर्जुन को छोड़ूंगा भी नहीं, ये हथियार भी बेकार गया, श्री कृष्ण ने कहा खत्म खेल हो गया, अम्मा जी तुम गई लेकिन तुम अपना काम नहीं करके आ पाई, समझ गए ना, अर्जुन तो सुरक्षित नहीं रहा, ये जो गोलियां उधर को खिलाई ना श्री कृष्ण ने, उनके सबके चित्त को विभक्त किया, भले ही उसने कुछ कहा हो लेकिन अंदर में तो ये मेरे छोटे भाई अंदर में बात तो घुस गई ना, तो वही लड़ाई नहीं रह पाई, अर्जुन मेरा छोटा भाई, वो गोली गलती से अर्जुन ने भी खा ली समझ में आई कि नहीं आई, उनको वो जो समझा रहे थे, यद्यपि इनको पता नहीं चलने दिया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, बहुत सख्ती से मना किया था कुंती को कि पता नहीं लगे, नहीं तो इनका चित्त विभक्त हो गया तो ये सब जाकर के उसके चरणों में नमस्कार करेंगे, वो सम्राट बन जाएगा ये कोई लड़ने वाले नहीं है तेरे बेटे, इन्हें बताना मत कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। फिर क्या हुआ मालूम आपको, अर्जुन ने भी वो गोली खा ली, वो भी कहने लग गया कि मेरे तो ये सब भाई है, ना सही वो सगा भाई लेकिन ये चचेरे भाई तो है ही है ना, दुर्योधन वगैरह सब, और ये ताऊ जी खड़े हैं, और ये यहाँ पर ये खड़े हैं, ये दादाजी खड़े हैं, ये गुरु जी खड़े हैं, मैं इनसे नहीं लड़ता, तो उनने उल्टा महामंत्र निकाला कि बेटा युद्ध के मैदान में कोई भाई बाप ताऊ दादा नहीं होता, दो ही होते हैं युद्ध के मैदान में, या शत्रु या मित्र। जो अपने पक्ष में है वे मित्र हैं, जो सामने के पक्ष में है वे शत्रु हैं। युद्ध के मैदान में तीसरा होता ही नहीं, दिमाग में से निकाल दो बस। कोई ये ताऊ फाऊ नहीं है, कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। और इसके लिए पूरी गीता लिखनी पड़ेगी 18 अध्याय की, है ना। लेकिन इतनी सी चीज उसके अंदर चली गई थी ना, और उसका रिएक्शन हो गया तो कितने कितने इंजेक्शन देने पड़े 18 अध्याय में, कितने जाकर के तब मुश्किल से नॉर्मल हुए। और फिर उनका चित्त अभिवक्त हुआ तब वो जीते। कहने का अर्थ यह है कि जिनका चित्त विभक्त हो गया वो हार जाएंगे, और जिनका चित्त विभक्त नहीं हुआ वो जीत जाएंगे। एक बरस तक बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच बीच में चित्त विभक्त हो गया, आत्मा से हटकर पर पदार्थों पे चला गया, और जब लगातार आत्मा पे गया तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए कहते भाई साहब, एक तरफ गायक और एक तरफ गे माने सारा जगत, जिसमें देव सास गुरु भी हैं, ध्यान से सुन लेना, उनको भी निर्दयता से पर में शामिल करना, अपने में शामिल नहीं करना, और उनको भी ज्ञान का गे बनाना उसी प्रकार हे है जैसे किसी साधारण पर पदार्थ को, तब आत्मा का ध्यान होगा। आत्मा का ध्यान करना हो और बीच में गुरुजी याद आ जाए तो ध्यान भंग होगा कि नहीं होगा, बोलो। चाहे पत्नी याद आए चाहे गुरुजी याद आए, एक ही बराबर ही है, ध्यान भंग होने की अपेक्षा तो है कि नहीं, बोलो। एक तरफ राम और एक तरफ गाम, बोलो। राम को चुनने को तैयार हो तो तुम भगवान बन। ये गे गायक शंकर दोष के परिहार की विधि है। गे माने सारा जगत और गायक माने अपना भगवान आत्मा, और इन दो में से ये भगवान आत्मा मैं हूँ और सारे जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्त्वयो, आत्म तत्व में और परद्रव्य में कोई भी संबंध नहीं है, ये निर्णय कर पक्का। और यही मैं हूँ और यही हमारे ज्ञान का गेय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय बना बन जाए तो उसका नाम जितेंद्रिय, जिन नाम का पहला भगत है। भगवान कहते हैं कि मेरी तेरे को याद भी नहीं आए तो तू समझ लेना तू मेरा नंबर एक का भगत है, और मेरी याद आई तो दो नंबर का भगत है, माने निश्चय वाला दो नंबर का नहीं, व्यवहार वाला। क्यों? द्रोणाचार्य ने कहा था ना, क्या दिख रहा है युधिष्ठिर? कि चिड़िया, उसकी आंख, वृक्ष, डाली, और कि गुरुजी आप भी दिख रहे, कि मैं भी दिख रहा हूँ, कि हाँ तो बैठ जाओ, हो गई परीक्षा। बिना ही परीक्षा दिए फेल हो गए वो। अर्जुन से कहा, क्या दिख रहा है बेटा? कि चिड़िया की आंख का बिंदु, कि चिड़िया के नहीं, कि मैं के नहीं, अच्छी तरह देख, अच्छी तरह देख रहा हूँ, मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चला दे तीर बेटा, गया। क्यों? गुरुजी आप नहीं दिख रहे हो ऐसा कहा तो गुरुजी ने पास किया, और जिसने कहा गुरुजी आप दिख रहे हो उस शिष्य को फेल कर दिया। अपने भगवान ही ऐसे है, हम कहेंगे मैं सामायिक में भगवान मुझे आप दिख रहे थे कि बेटा फेल हो गया, भगवान मैं नहीं दिख रहा था मेरा आत्मा दिख रहा था कि जब बेटा पास है। लेकिन नहीं, बोलो आप, भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ था जब ध्यान कर रहे थे ना, किसका ध्यान कर रहे थे? आदिनाथ का कि पार्श्वनाथ का? अपने आत्मा का। अपने आत्मा के ध्यान करने से भगवान बनते हैं, इंद्रियों को जीतते हैं। किसी दूसरा आत्मा कितना ही महान हो उसके ध्यान से दूसरे को नहीं जीतते हैं। इसको बोलते हैं गे गायक शंकर दोष का परिहार, और वो नंबर एक की स्थिति है। असलियत में अभी तो एक ही नंबर की हो सकती है, क्योंकि चौथे में वे तो 11वें गुण स्थान में होती दो नंबर की, तो वो 3 की होती है 12वें गुण स्थान में, और यहाँ तो 7 में से आगे होता ही नहीं है, तो उन दो को तो समझना ही समझना है, करना थोड़ी है, लेकिन समझ लो, उसको भी समझाते हैं, ख्याल में आया करी है। तो असली तो ये है ना, वो क्या है, ये होती है गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक, और दूसरे नंबर की होती है भाव भावक शंकर दोष के परिहार पूर्वक। और तीसरे नंबर की होती है भाव भावक भाव के अभाव पूर्वक। अभी दो बातें और समझनी पड़ेंगी, ये भाव भावक क्या है और उसका संकर क्या है और उसका परिहार क्या है, और ये भाव भावक क्या है और उसका अभाव क्या है, तब वो जल्दी समझ में आ जाएगी ना। तो यहाँ कहते हैं कि भावक माने अब दर्शन मोहिनी कर्म तो खत्म हो गया, जितेंद्री जिन बनते ही सम्यक दर्शन तो हो गया और अनंतानुबंधी भी चली गई। अब तो चारित्र मोहिनी की तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, है ना, तीन प्रकार की प्रकृतियां रही। अब तो इन्हें जीतने की बात है, तो इन्हें जीतना है तो क्या करें? ये भी देखो, अंदर में ऐसा समझ लिया कि ये मोह मेरा कुछ नहीं, गाथा ऐसी है ना, जुम मोहम तू जनता मोह को जो जीत जाने ज्ञान मैं निज आत्मा, जित मोह जिन उनको कहे परमार्थ गायक आत्मा, सब मोह क्षय हो जाए जब जित मोह सम्यक श्रवण का, तब क्षीण मोही जिन कहे परमार्थ गायक आत्मा। ये दो गाथाओं का पद्यानुवाद है, मैंने किया है, तो मेरी किताब में तुम्हारे में नहीं हुआ, है ना। क्या लिखा अभी, क्या हुआ भाव भावक क्या चक्कर है कि आत्मा में राग द्वेष मोह होते, मोह माने चैत्र मोह, दर्शन मोह नहीं लेना, राग द्वेष अभी भी होते, सम्य दृष्टि के राग द्वेष होते कि नहीं होते, और नहीं होते होते तो लड़ने के लिए काय को निकलते, शादियां करने के लिए काय को निकलते सम्य दृष्टि लोग, कि शास्त्र कैसे लिखते बुनियाद, तो राग द्वेष तो होता है ना। अब इस राग द्वेष को नाश करने की विधि बतानी है, उसको बोलते चारित्र मोह को जीतना। इसलिए दूसरी स्थिति का नाम क्या है? जित मोह। पहली का नाम क्या था? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना। अब दूसरी का नाम क्या है? मोह को जीतना। मोह माने दर्शन मोह नहीं, मोह माने चारित्र मोह, चारित्र मोह माने राग द्वेष, राग द्वेष माने अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन राग द्वेष, इतना समझ लेना, ठीक है। अब इनको जीतना और नाश करना, ये दो बातें हैं। जीतना माने क्या? हमने उसे हरा दिया, उसने हार स्वीकार कर ली, तो राज उसका उसी को सौंप दिया और फिर अपन आराम से घर आ गए, और नाश करना, उसकी हत्या कर दी और राज अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो जित मोह माने मोह को जीतना, माने अपने अधीन कर लेना, ख्याल में आया ना, और क्षीण मोह माने मोह का नाश कर देना। तो भाव भावक संकर दोष का परिहार पूर्वक तो होता है जित मोह, और भाव भावक भाव के अभाव पूर्वक होता है क्षीण मोह। अभी एक क्या है, थोड़े शास्त्रीय शब्द है, मैं सरल करता हूँ, अभी ख्याल में आएंगे। कहते वो राग देश हो रहे ना, सम्य दृष्टि की भूमिका में भी जो राग देश हो रहे, अब नाश तो उनका भी करना है ना, तो कैसे करें? तो पहले ये माने के राग देश मेरे हैं, राग देश मेरे हैं, तो अपने को कोई नाश करता है? पहले तो ये मानो कि ये राग देश मेरे नहीं है, किसके हैं? कि वो जो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है ना, उसके निमित्त से हुए हैं, इसलिए जे उसके हैं। देखो समझना, एक माँ बहन के गर्भ रहता है अपने पति के संयोग से, उसे कितना आनंद का अनुभव होता है, और बहुत खुशी 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 और आत्मा मनाया जाता है, और लड्डू खिलाए जाते हैं, सब होता कि नहीं होता? और किसी पर पुरुष के संयोग से हो, लेकिन उसके उसकी राजी से हो, तो दूसरी परिस्थिति बनती है, और कहीं उस पर बलात्कार हो जाए जबरदस्ती और फिर गर्भ रह जाए, तो उसको क्या स्थिति बनती है? तीन स्थितियों में ध्यान देना आप। एक में तो पूरा प्रेम होता है, दूसरे में प्रेम भी होता है और घृणा भी होती है, डर भी लगता है, इज्जत भी जाएगी, क्यों? और तीसरे में तो अत्यंत घृणा, उस संतान के प्रति रंच मात्र भी अपनापन नहीं होता, बल्कि उससे उतना द्वेष होता है कि जैसे द्वेष उस पर हुआ बलात्कार करने वाले पर, और उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो इसकी हत्या करके इसे पीट पीट कर कदाचित हो जाए ना, उसका बदला निकालती है सारा द्वेष उसका, वो इससे निकालती है कि नालायक तेरे पीछे मेरी जिंदगी खराब हो गई है, अब मैं समाज से बहिष्कृत हो गई हूँ, अब समाज मेरे अच्छा योग बर नहीं मिला है, मुझे दर्द की ठोकर खाने पड़ रही है, और उसकी पिटाई करती कि नहीं करती? तो अब वो जो चारित्र मोहिनी कर्म रह गया भावक, उसको ये आत्मा ऐसा समझ रहा है बलात्कार करने वाला जैसा, और जो अंदर में जो मोह राग द्वेष हो रही ये कहती है तो उसकी संतान है, ये भावक का भाव्य है, ये मेरा नहीं है, उसकी तरफ उसका रिश्ते डालते हैं। समझ गए ना, ग्राहक का ग्राह्य होता है, ग्राहक का गेय होता है, समझे ना आप। ऐसे ही भावक का भाव्य बहनोई साले का होता है, साला बहनोई का होता है, यानी ये आत्मा में जो राग द्वेष मोह खड़े हुए वो कहता है ये मेरे है ही नहीं, ये तो नालायक उस भावक के है जो मेरी शत्रु में से बच गया, दर्शन मोह तो खत्म हो गया और उसी का जुड़वा भाई ये बच गया। ये संतान मेरे में हुई है लेकिन ये संतान मेरी नहीं है, ये किसकी है, उस कर्म की है, वो भावक का भाव्य है, तो उससे अपना आत्मा जुदा है। अब हो गई तो होने दो, क्योंकि मैं इतनी नालायक तो नहीं हूँ कि इसकी हत्या कर दूं, हत्या का महापाप तो मैं नहीं लूंगी, और बच्चा हो गया तो पालना भी पड़ेगा, क्यों दूध भी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि दूध नहीं पिलाना भी हत्या करने ही जैसा है, लेकिन 24 घंटा उसमें परायापन रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा राग द्वेष अंदर में पैदा हो रहे हैं और उन्हें पाल भी रहा है, लेकिन 24 घंटा ये जार की संतान है और जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ऐसा भाव उसके प्रति निरंतर बना रहता है, ये इसका नाम है भावक का भाव। माने इससे मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरा सद्भाग्य नहीं है, ख्याल में आया ना, ये भावक का भाव है, ये मोहिनी कर्म का उदय से हुआ परिणाम है, भले ही मेरे में हुआ लेकिन ये मेरा नहीं है, ये भावक का है। तो ये भाव को राग द्वेष को कर्म के खाते में डाल देना, और इसी वक्त जो मेरा शुद्धात्मा है वो मैं हूँ, और उसमें ऐसा जमना क्या कि वो जो भावक नाम का जो मोह कर्म था ना वो एकदम दब जाए, अंतर मुहूर्त को तो ऐसा दब जाए कि जैसे वो है ही नहीं। वो दबेगा तब तो ये भावक भाव भाव नहीं होगा ना, यानी राग द्वेष मोह रहे ही नहीं अपनी, लेकिन वो दब गए। दबी चीज कब तक दबी रहेगी, ध्यान से सुनना, ऐसा 5 मिनट में खत्म करता हूँ, घबराना नहीं। अपने को 104 टेम्परेचर हो गया, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर मिला नहीं, तो अपन क्या करते, क्रोसिन की गोली दे दो, क्रोसिन की गोली दे दो, बुखार नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन भैया डॉक्टर को बुलाओ, तब बुखार तो खत्म हो गया, अब तो 99 आ गया, अब काय को बुलाते डॉक्टर को, कि भैया वो तो क्रोसिन की गोली से उतरा है, एक गोली का असर खत्म होते ही फिर जाएगा, अभी उसका उपशम हुआ है, वो अभी नाश नहीं हुआ है बुखार। एक क्रोसिन की गोली तो उस बुखार को दबाती है, खत्म नहीं करती है। ऐसे ही ये मोह को जीतना ये तो दबाना है उपशम श्रेणी में, ये दब गया है लेकिन ये दबा भी अनंत काल तक नहीं रहेगा, 48 मिनट के भीतर भीतर ये उसी जोर से फिर उदय में आएगा। ख्याल में आए ना, कोई अपने पास तगादे वाला आया, आपने आज का पैसे के लिए कहा था 1 लाख रुपए, मुझे दो, नहीं भरना मैं देख लूंगा, कि भाई साहब एक दिन की मोहलत और दे दो, अब आज बैंक नहीं खुले, मैं क्या करूं, कल बैंक खुल जाएंगे, ठीक है कल बैंक खुल जाने के बाद में मेरा पैसा आ जाना चाहिए, मैं एक दिन की मोहलत देता हूं। ऐसा वो वापस चला गया ना एक दिन की मोहलत दे के, पर ऐसा कर्म कहता है मैंने तुम्हें 48 मिनट की मोहलत दी, तुम पे देखे तो कर लो, 48 मिनट बाद फिर मैं आ जाऊंगा। इसको ऐसे जित मोह बोलते हैं, ये 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, लेकिन अंदर सत्ता में वो शत्रु वैसे ही का। अबे कर्जा चुका नहीं है, कर्जा देना खड़ा है, ख्याल में आए ना, अभी तो उसने हमको एक दिन की म्याद दी है, अब एक दिन में तुम कर सकते हो इंतजाम तो कर लो, तुम ये भी इंतजाम कर सकते हो कि एक दिन के भीतर 48 मिनट के भीतर उसे खत्म ही कर लो, मन सीधी उपशम श्रेणी से नीचे आकर छपक श्रेणी आरोहण करके उसका नाश कर दो, ऐसा भी हो सकता है, और नहीं करोगे तो बेटा वो तुम्हारा नाश कर देगा, ये ना तो शत्रु होता ना हमने सामने, उस बंदूक लिया वो और अपन लिया बोला तुमने गोली क्यों मार दी, कि साहब मैं 1 सेकंड यदि गोली नहीं मारता तो अगले ही सेकंड वो मुझे गोली मार देता, मैं तो अपनी जीवन की रक्षा के लिए उसे गोली मारी, तो मजिस्ट्रेट भी माफ कर देता है कि नहीं, आत्म सुरक्षा में गोली चलाई, होता कि नहीं होता, बोलो ऐसा। तो ऐसा ही है यह मामला, इसको जितमोह कहते हैं। तो कहते भैया वो भाव भावक भाव संकर दोष का तुमने परिहार किया, झगड़ा मेट दो ना, भाव भावक भाव का अभाव ही कर दो ना। ये कैसे होएगा, हम तो कर देते हैं, क्योंकि वो भावक नामक मोह कर्म है उसका सत्ता से ही नाश हो जाए तो वो उदय में ही नहीं आए, तो आत्मा में राग द्वेष मोह पैदा ही नहीं हो, उसका नाम है भाव भावक भाव का अभाव, और इसको बोलते हैं क्षीण मोह, और उसे तीसरे नंबर की भगवान की स्तुति बोलते हैं। और उसके बाद कि उसके बाद तो भगवान बन जाएगा तेरे में गुणस्थान में। अब स्तुति का काम क्या रहा, वो तो स्तुति का फल प्राप्त हो गया, इसे तेरे में गुणस्थान में स्तुति का फल प्राप्त होता। ये निश्चय स्तुति है, कौन जितेंद्रिय जिन नंबर एक, जित मोह जिन नंबर दो, और क्षीण मोह जिन नंबर तीन। लेकिन ये नंबर दो तीन जैसे तुम नहीं समझना, आपके रुपये पैसे वाला उल्टा है। एक नंबर माने क्या, जघन्य, और दो नंबर माने मध्यम, और तीन नंबर माने उत्कृष्ट, ऐसा अर्थ लेना, नहीं तो ढंडे पानी वाला एक दो नंबर तीन नंबर ले लो तो मुश्किल हो जाएगी। ढंडे पानी वाला कैसे जानते, एक नंबर दो नंबर तो जानते कि नहीं, तीन नंबर जानते कि नहीं जानते, नहीं जानते भाई साहब, तीन नंबर दो ही नंबर होते, तीन होते भाई साहब मुझे पता है, पहले मैं भी नहीं जानता था। एक नंबर तो वो जो गवर्नमेंट को बताया जाए, रोकड़ में लिखा हो, सब दुनिया को बताया जाए, और दो नंबर जो कि सारी दुनिया को बताया जाए लेकिन अकेले गवर्नमेंट को नहीं बताया जाए, इनकम टैक्स वालों को नहीं बताया जाए और सारी दुनिया को बताया जाए, वो कौन सा है, दो नंबर। और तीन नंबर मालूम, कि गवर्नमेंट को भी नहीं बताओ और घर वालों को भी नहीं बताओ। मैं आपको सही घटना सुनाता हूँ। भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण वर्ष था और हम राजगिरी में थे, तो वहीं से गया जी पास में है, तो गया जी में एक सेमिनार थी अनेकांत पर, तो मैं वहाँ लेख पढ़ने गया था, जवाहरलाल जी वगैरह हम 5-7 लोग गए थे, सतीश भाई आप भी थे ना उसमें, तो वहाँ मैंने लेख पढ़ा। लेख पढ़ने के बाद में एक आदमी के घर पे जीवने गया, तो उनके यहाँ डीएस कोठारी भी साथ में थे, वो अध्यक्ष थे, डीएस कोठारी समझते हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, तो वो भी थे साथ साथ। तो मैंने उनसे प्रशंसा की कि साहब जिनके अपन खाना खा रहे हैं कितने बड़े सेठ गुदार हैं, ये 1,00,000 रुपया नगद बांध के लाए और नेमीचंद जी पाटनी के हाथ में रख दिया, और नेमीचंद पाटनी के भाई थे चचेरे, कि ये मैं आपके टोरमल स्मारक को देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो भाई साहब आप नगद ले आए, इसे अच्छा अच्छा रास्ते में कुछ, अरे काय का करता है, ठीक है आपको कर लो, ऐसे करा करके। तो मैंने कहा ऐसा आकर के इन्होंने दिया, तो उनसे मैंने कहा, उन्हीं के मुंह पे, उनके लड़के वड़के भी सुन रहे थे, अब बेचारे नीति बाद में अकेले में पंडित जी तुमने गजब कर दिया, ये क्या हुआ कि बच्चों के सामने कह दिया, तो उसमें क्या